ये आकाशवाणी है। समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है विशेष श्रृंखला सेवा पर्व। इसके छठवें संस्करण में आज सुनिए वैश्विक शक्ति के रूप में उभरता भारत।
दिस इज आकाशवाणी न्यूज सर्विसेज डिवीजन प्रेजेंट स्पेशल सीरीज सेवा पर्व। लेट्स लिसन टू द सिक्स्थ एपिसोड इंडियाज इमर्जेंस एज अ ग्लोबल पावर।
आज हर कोई ये कह रहा है कि 21वीं सदी भारत की सदी है। दुनिया में आप किसी भी देश में जाएं, वहां के लोग भारत को लेकर एक नई जिज्ञासा से भरे हुए हैं। वी आर नॉट ओनली ग्रोइंग बिगर बट वी आर ऑल्सो ग्रोइंग फास्टर। व्हेन इंडिया ग्रोज द होल वर्ल्ड ग्रोज।
ग्लोबल उठा पटक हर किसी के लिए चिंता का कारण है। ऐसे में भारत का लोकतंत्र आशा की किरण बना हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक ऐसा स्तंभ है जो जितना मजबूत होगा दुनिया को उतना ही सशक्त बनाएगा।
कुछ ही वर्षों में भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में होगा, ये मोदी की गारंटी है।
Welcome to Akashvani's special series Seva Parv. The theme for today's episode is India's emergence as a global power. And joining me in the program are former ambassador Mr. Ashok Sajjanhar and political analyst KG Suresh. आप दोनों का आकाशवाणी की इस विशेष श्रृंखला सेवा पर्व के आज के एपिसोड में स्वागत है।
धन्यवाद।
और श्रोताओं की, जैसे मैंने बताया भी कि आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे वैश्विक शक्ति के रूप में भारत के उदय के बारे में।
India as a global economic powerhouse. Over the past 11 years, India has rapidly transformed into a global economic powerhouse under Prime Minister Narendra Modi's leadership. Since 2014, India has become the world's fourth largest economy, driven by consistent GDP growth averaging over 6.5% annually. India is still the fastest growing major economy in the world. Key reforms such as Make in India, Digital India, Atmanirbhar Bharat and the implementation of the Goods and Services Tax and now next generation GST reforms have boosted manufacturing, digital infrastructure and simplified taxation. Massive infrastructure investments in roads, railways, ports and airports have improved connectivity and logistics. Over 56 crore bank accounts have been opened under PM Jan Dhan Yojana, leading to financial inclusion of the most underprivileged sections of the society. India has expanded its global trade footprint, strengthened ties with major economies, and become a leader in renewable energy, positioning itself as a key player in sustainable growth. The Modi government's initiatives have brought over 25 crore people above the poverty line, who are now among the new middle class, powering demand in the economy. In this way, from achieving historic GDP growth and record exports to revolutionizing digital payments, the country has laid the foundation for the Viksit Bharat by 2047.
Mr. Suresh, today the world's fastest growing economy or major economy is India. The first quarter GDP of this fiscal year surged to an impressive 7.8% over a growth rate of 6.5% in the same quarter last year. What are the factors powering India's continuing transformation from a developing nation to a dynamic economic force, especially given the challenges roiling the global economy right now?
Absolutely. I think it's a very relevant question, and I think the entire world is trying to comprehend. A lot of research is going on that in spite of the financial difficulties being faced by across the world, the wars, the conflicts which are happening across the world, the Russia-US standoff with regard to the Ukraine war and the West Asia happenings in West Asia, you see a lot of, you know, uncertainties. But in spite of that, India is growing by leaps and bounds. And I attribute this one to the determination of the present government led by Prime Minister Narendra Modi, that it would be India's national interest that would be paramount, and we would not compromise at any cost on that. And the kind of relationships that the tie-ups, the strategic alliances that we have built, economic cooperation that we have built with countries of Europe, countries of countries like US, Israel, across the world, BRICS. And then the third factor is the focus given to the to boost the Indian economy.
Right.
From startups to the focus on Atmanirbharta or self-reliance that is there. And I must say that, and of course, the institutional framework, which have ensured, the financial institutions have ensured a stable, strong regulatory framework to ensure the investor confidence.
Right.
That is also a very key factor. But having said all this, certainly one must give credit to the enterprise of the Indian people also.
Right.
That they are not going to be cowed down by the global situation and circumstances. They are very enterprising. And even across the world, they have made a mark for themselves. Even it would not be an exaggeration to say that many of the Western economies are being fueled by the enterprise of Indian entrepreneurs and NRIs.
Right.
So I think that the resilience of India, the growing middle class, and of course, the policies of the government, which is visionary, which is long-term, and which is ensuring stability, infrastructural development, focus on manufacturing, self-reliance. I think all of these factors have contributed to India's continued growth.
Mr. Sajjan, पिछले साल एक कार्यक्रम में जाने माने अर्थशास्त्री जगदीश भगवती ने कहा था कि पुराने दिनों में विश्व बैंक भारत को बताता था कि उसे क्या करना है, लेकिन अब भारत विश्व बैंक को बताता है कि उसे क्या करना है। यानी कि अब हम सलाह नहीं लेते हैं, बल्कि अब हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था बन गए हैं जो वैश्विक आर्थिक विमर्श को आकार देती है। हमारी तेजी से बढ़ रही आर्थिक ताकत ने हमारी वैश्विक छवि को किस तरह से और कितना प्रभावित किया है?
भारत की जो क्षमता है वो बहुत बढ़ रही है, और हमारी जो कैपेसिटी है वो बहुत बढ़ रही है, और मैं कहूंगा इसमें हमारा सबसे महत्वपूर्ण योगदान, जैसे कि डॉक्टर सुरेश ने भी अभी बताया, मैं समझता हूँ इसमें हमारी लीडरशिप का है। क्योंकि जो भी अगर आपको कोई काम करना होता है तो उसमें लीडरशिप एम्बिशन उसकी बहुत आवश्यकता होती है, और हमारे देश में जो लीडरशिप दिखाई है न केवल अपने नेशनल लेवल पर परंतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो हमने लीडरशिप दिखाई है उसी का मैं समझता हूँ जो पूरे विश्व में डंका बज रहा है। अब दूसरा है यहाँ पर भारत की जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, यहाँ पर तीसरी बार सरकार आई है तो देयर इज अ कंटिन्यूटी, जो भी पॉलिसी फॉर्मुलेशन है, पॉलिसी मेकिंग है, उसमें कंटिन्यूटी है, और ये मेरे विचार से पूरे विश्व में सबको प्रभावित कर रहा है। देखिए, विश्व में आज ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है जो भारत के योगदान के बिना जिसका समाधान निकाला जा सके। आप देखिए आतंकवाद को, आप देखिए पेंडेमिक्स को, आप देखिए अगर अर्थव्यवस्था ही है, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, परंतु अगर हम हाल के उसमें देखें, पहले भी जो ये दो युद्ध हो रहे थे रूस और यूक्रेन के बीच में, और इसराइल और गाजा हमास के विरुद्ध जो युद्ध हो रहा था, पूरी दुनिया इससे त्रस्त थी, पूरी दुनिया ग्रसित थी, परंतु भारत एकदम आगे चल रहा था, और सबसे ज्यादा जिसे कहा जाता है ग्लोबल साउथ वो प्रभावित हुआ इससे, परंतु भारत ने वो सभी को सपोर्ट करने का काम किया है। आखिरी बात मैं इसमें यही कहूंगा, जो भारत करीब 18% पूरे विश्व के ग्रोथ को सपोर्ट करता है, और इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा विश्व देख रहा है भारत की तरफ।
आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है। अब हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां भारत ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस बनने जा रहा है। इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इमर्जिंग इकोनॉमी। इंडिया नाउ हैज द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम।
जल्द ही भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा।
इस बात में कोई संदेह नहीं कि आने वाले वर्षों में भारत विश्व का ग्रोथ इंजन होगा।
India's role in geopolitics and strategic alliances. In a world marked by geopolitical uncertainty and economic turbulence, India has tactfully balanced its relationships with major global economies. This strategic diplomacy has ensured India's steady growth and strengthened its global influence. Despite shifting global dynamics, India has maintained strong defense and energy cooperation with Russia, securing vital supplies and strategic support. India has played a pivotal role in shaping the Indo-Pacific strategy, enhancing cooperation with the Quad countries. The Modi government has recently signed free trade agreement with the United Kingdom, and negotiations with other major economies are still on. The government has always prioritized stronger ties with neighboring countries, fostering regional cooperation. India boosted its defense capabilities by modernizing its armed forces and promoting indigenous defense production under the Make in India initiative. India's voice has grown louder in international organizations such as the United Nations, G20, BRICS, and the Shanghai Cooperation Organization. In past 11 years, India has truly transformed into a proactive geopolitical actor with robust strategic alliances and a clear vision for regional and global stability.
Mr. Sajjanhar, my next question is to you, that at a time when trade wars, armed conflicts that you mentioned, and border tensions are affecting geopolitics, how is India's support for multi-alignment or a multipolar world helping it navigate these challenging times while maintaining an independent foreign policy?
India is the fastest growing major economy in the world, and the managing director of the IMF herself has said that in this era of gloom and doom, India is the one ray of hope. As far as economy is concerned, that's right. But I think even at the global level, India has become a very significant center of decision making globally. We have been following a policy of multi-alignment now for the last many years. In the Cold War, it was a policy of non-alignment because of two blocks. After that, we saw a period of unipolarity. But today, there is a period of multipolarity. India is emerging as a very significant pole in this. And in that context, independent decision making, having our strategic choices and having our strategic options and taking those decisions independently is very critical and very crucial for a country which is such a large economy, but also has so much of talent.
Mr. Suresh, aaj Bharat BRICS, Quad, SCO aur G20 jaise antarrashtriya sangathan aur manchon ka ek mahatvapurna sadasya hai. Aap ise kis tarah dekhte hain? Kya ye dikhata hai ki duniya ke desh ab is baat ko maan rahe hain ki vaishvik vikas aur shanti ke liye भारत बहुत अहम है?
इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि भारत की हमेशा से एक भूमिका रही है, लेकिन आगे चलकर आज भारत अपने राष्ट्रहित की बात करते हुए, लेकिन वो एक स्वार्थ वाला दृष्टिकोण नहीं है
जी।
एक है कि राष्ट्रहित की बात करना, व्यापक राष्ट्रहित क्या है
जी?
भारत के हित में क्या है, भारत के हित के साथ साथ विश्व का हित क्या है। जब ब्रिक्स का नेतृत्व हमने संभाला तो हमारा गुरुमंत्र या ध्येय वाक्य क्या था? वह था वसुधैव कुटुंबकम। हमारा वैश्विक दृष्टिकोण हमेशा से, सदियों से यही रहा है कि हम पूरे विश्व को एक कुटुंब मानते हैं और हमने, चाहे वो कोविड के जो बहुत ही कठिन समय में रहा हो, जब हमारे अपने लोगों को भी हमें टीकाकरण प्रदान करना था, लेकिन इसके बावजूद हमने अपना मानवीय जिम्मेदारी उसको निभाया और 100 से अधिक गरीब पिछड़े मुल्कों को हमने जो है वैक्सीन प्रदान किया। वो वैश्विक भूमिका है, भारत का सॉफ्ट पावर है। भारत विदेशों में मिलिट्री बेसिस नहीं स्थापित करता है
जी।
भारत विदेशों में अस्पतालें बनाता है वहां के लोगों के लिए। भारत विदेशों में जो है सांस्कृतिक केंद्र की बात करता है, और भारत कर्ज के एक बहुत बड़े जाल में उनको फंसाने का प्रयास नहीं करता है जैसे कुछ मुल्क करते हैं
जी।
भारत प्रयास करता है उनको पूरी तरह मदद करने का, ताकि उनकी अधोसंरचना बने, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बने और वे मजबूत हो। इस वजह से भारत की जो वैश्विक स्तर पर जो स्वीकार्यता है वो बढ़ गई है। भारत अपने हक की बात करेगा, भारत ने कभी समझौता नहीं किया। अमेरिका के साथ बहुत रिश्ता मजबूत होते हुए भी। रूस और यूक्रेन के युद्ध में व्लादिमीर पुतिन साहब को प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि यह समय युद्ध का नहीं है अपितु शांति का है। यह कहने के बावजूद भी अपने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए तेल का आयात जो है आपने रूस से किया, क्योंकि उसमें भारत का हित है, भारतीयों का हित है। तो वो वैश्विक संतुलन बना के रखते हुए भी सभी मुल्कों को साथ लेके चलने का और वैश्विक मुद्दों पर, चाहे वो जो एनर्जी को लेकर, ऊर्जा को लेकर, चाहे वो कार्बन एमिशंस को लेकर, पर्यावरण के विषयों पर, ग्लोबल ट्रेड के विषयों पर, भारत ने हमेशा जो विकासशील देश हैं उनका पक्षधर रहा है। इसलिए पूरा विश्व भारत के कोई सामरिक ताकत के आधार पर नहीं, वो अपनी जगह है लेकिन उसके आधार पर नहीं, क्योंकि भारत ने स्वार्थ से उठकर विश्व के व्यापक हित की बात कही है, इसलिए भारत का सम्मान है पूरे विश्व में।
आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की साख बढ़ी है। नीति निर्धारित करने वाले जिन जिन संगठनों में आज हिंदुस्तान को जगह मिली है, वहां हिंदुस्तान की बात तो सुनना जा रहा है। हिंदुस्तान उसमें दिशा देने में, नेतृत्व करने में अपनी भूमिका अदा कर रहा है। दुनिया के मंचों पे हमने अपनी आवाज को बुलंद की है। कई वर्षों से जिन संस्थाओं में हमें सदस्यता का इंतजार था, आज देश को विश्व की अनगिनत संस्थाओं में हमें स्थान मिला है।
India's military modernization and defense diplomacy.
How crucial, Mr. Suresh, is the present government's focus on modernizing India's defense forces? If we look at Operation Sindoor, would you agree that it was not just a tactical success, but also a validation of India's defense modernization and indigenization policies?
Absolutely. Post-Operation Sindoor, today you see that, you know, there is a huge demand for Indian weapon systems. Indian air defense systems, Indian missiles like BrahMos, and the kind of focus now we have always treated the private sector as a pariah.
Right.
We never allowed them to come into the mainstream except building some uniforms, you know, preparing some stitching uniforms. We never gave them that kind of freedom. Today, the private sector is into critical defense manufacturing. That public-private partnership today has come into play. And today, many countries are today buying. Whether it is Vietnam, whether it is Southeast Philippines, whether it is Southeast Asia, they are all buying from India.
Right.
Because they are affordable and they have proved their strength in conflict situations. India's strength is now being reckoned even by the strongest countries of the world.
मिस्टर सज्जनार, अभी सुरेश जी बात कर रहे थे कि हमारे भारत की जो रक्षा क्षेत्र के जो निर्यात हैं, तो मैं वही आपसे बात करना चाहती हूँ कि जो पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि रक्षा क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भरता पर ज्यादा बल दे रहा है। हम सिर्फ अपनी सुरक्षा की जरूरतों को खुद पूरा नहीं कर रहे, बल्कि जैसे कि अभी मिस्टर सुरेश ने कहा कि हम अब निर्यात कर रहे हैं, तो अगर डिफेंस डिप्लोमेसी के लिहाज से इसे और भारतीय सुरक्षा बलों के जो दूसरे मित्र देशों के साथ युद्ध अभ्यास वगैरह होते हैं, उन्हें आप कितना अहम मानते हैं?
ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अहम है। आपने पहला प्रश्न किया था हमारे निर्यात के बारे में, तो वो तो हम बिल्कुल पिछले कुछ वर्षों में देखें तो हम बिल्कुल नए रिकॉर्ड्स हम सेट कर रहे हैं, और न केवल साउथ ईस्ट एशिया के देश परंतु अगर वेस्ट एशिया में देखा जाए, यूरोप में देखा जाए, एमिनेशंस हैं वो सभी हमारे वहां पर भी बड़े अच्छे निर्यात हो रहे हैं। और दूसरा आपने कहा है कैसे हम जो युद्धाभ्यास करते हैं उनका क्या महत्व है, और मैं समझता हूँ ये जो इंटर ऑपरेबिलिटी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको याद होगा जो हमने इसकी शुरुआत की थी 2004 में जब सुनामी हुआ था, 26 दिसंबर 2004 को सुनामी ने पूरे यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया में, और तब उस समय भारत ने अपना जो पहला असिस्टेंट सपोर्ट मिशन था वो श्रीलंका भेजा, मालदीव भेजा, मॉरिशस भेजा, और उसी समय शुरुआत हुई थी क्वाड की, ये जो चार देश साथ में अब आप मिलकर काम करते हैं। और उससे पहले हमने शुरुआत की थी मलाबार एक्सरसाइजेस की, ये भारत और अमेरिका के बीच में, और अब तो जापान और ऑस्ट्रेलिया भी उसमें जुड़ गए हैं, बीच में सिंगापुर भी आ गए। तो देखिए ये इंटरऑपरेबिलिटी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि जो देश हैं जिनके जो सोच और समझ, जिनकी नीतियां हैं वो एक ही सतह पर हैं, एक उनकी पॉलिसी में बहुत ही ज्यादा कॉन्ग्रुएंस है, बहुत ही ज्यादा मेल जोल है, तो वो एक दूसरे के साथ जब ये एक्सरसाइज करते हैं तो दोनों में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, दोनों में बातचीत कैसे, अगर कोई ऐसी आपदा आती है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात आती है, या कोई किसी भी देश के ऊपर अगर ऐसा कोई जोखिम भरी बात आती है, तो कैसे दोनों देश साथ मिलकर या और भी जो ग्रुप है वो साथ मिलकर कर सकते हैं। जैसे अमेरिका के साथ हम बहुत ज्यादा युद्धाभ्यास करते हैं और यूरोप में फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ, बहुत देशों के साथ, रूस के साथ बहुत ही अच्छे हमारे युद्धाभ्यास होते हैं।
बहुत संक्षेप में आपसे इसी से जुड़े एक सवाल करना चाहूंगी, आपको लगता है कि जो हम डिफेंस डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, भारत की जो डिफेंस डिप्लोमेसी है, क्षेत्रीय सुरक्षा का जो संतुलन है उसको कायम रखने में भी बहुत जरूरी है?
कोई ये सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन ही है, जैसे हमारा प्रधानमंत्री जी ने कहा है दैट इज अ फोर्स फॉर ग्लोबल गुड, परंतु फिर भी अगर हम वहां पर बातचीत करते हैं उसका अगर मिलिट्री कंपोनेंट देखा जाए तो वो मालाबार एक्सरसाइजेस है, तो उसमें वो जो साउथ चाइना सी में हम देख रहे हैं चीन की तरफ से अगर अग्रेशन हो रहा है, या अगर हम इंडियन ओशन में देखें, हमारी जो एक्सरसाइज पहले सागर थी अभी महासागर को उसमें हमने परिवर्तित कर दिया है, वो बहुत महत्वपूर्ण है क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के लिए।
पिछले 10 साल से लगातार डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर हम एक मिशन लेकर के चले, उसके नतीजे आज नजर आ रहे हैं। आज सैन्य जरूरतों के लिए भी भारत की विदेशों पर निर्भरता लगातार कम हो रही है। आने वाले समय में मेड इन इंडिया हथियारों का डंका पूरी दुनिया में बजेगा।
इंडिया चैंपियनिंग द राइट्स ऑफ द ग्लोबल साउथ।
Under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, India has emerged as a vocal and influential advocate for the rights and interests of the Global South. India has continuously worked to promote equity, development and cooperation among developing nations. The nation has also expanded partnerships with countries across Africa, Latin America and Asia through initiatives such as International Solar Alliance and the India-Africa Forum Summit. During India's presidency of the G20 in 2023, Prime Minister Narendra Modi emerged as a leading voice for the Global South. The induction of the African Union into the G20 as a permanent member during India's G20 presidency at the New Delhi G20 Summit in 2023, the Modi government has championed the principle of common but differentiated responsibilities at global climate talks, ensuring that developing countries receive support for sustainable development without compromising their growth. India has consistently called for reforms in global institutions like the United Nations, WTO and the IMF to better represent the interests of countries of the Global South. Thus, in past 11 years, India has not only elevated its own global standing but also emerged as a committed champion for the Global South.
Mr. Sajjanhar, India has been at the forefront of championing the rights of the Global South, and in the last few years, we have been taking lead. So what makes India an ideal leader or the bridge between the Global South and the North?
India has excellent connection relations with the countries of the Global South. It is a member of the Global South. It has experience of what it has gone through as far as the development imperatives are concerned. So it can understand, you know, what the developing countries are going through. And that is why you would recall the initiative that was taken by the Prime Minister at the G20 summit when he said that we are going to have this Voice of the Global South summits. And these happened actually within 10 days of India taking over the presidency. Why? Because what India said is that there are only 20 countries which are in the meeting room who are discussing, deliberating and taking decisions on what the future global economic architecture should be. But there are 180 other countries which are outside the room, which are going to be impacted most of all by the decisions that are taken by these 20 countries. So he invited all of them, and you would recall that, you know, about 125 countries, many of them at head of state, head of government level, they participated in this. So basically it is in, and also the most important element also, this whole issue of the membership of the African Union,
yes.
That had been hanging fire for many years. No one had really been able to, so to say, bell the cat. It was India which reached out and gave due representation to the 54 countries of Africa by getting African Union also as a member of the G20. We don't want to be a leader of the Global South. We want to be a voice of the Global South. We want to be a representative of the Global South. And that is why you see wherever Prime Minister Modi goes or our representatives go, whether it is G7 or any of the other, they bring the issues that are of concern to the Global South countries in all these fora.
Mr. Suresh, jo samasyaen hain vikasshil desho ki, jaise jalvayu parivartan, debt crisis, khadya aur urja, asuraksha aur digital divide, in sab ko jab Bharat lekar aata hai, jab in sab ki Bharat baat karta hai kisi bhi vaishvik manch par, to वो कितना महत्वपूर्ण है और भारत के वो क्या स्ट्रेंथ्स और इनिशिएटिव्स हैं जो विकासशील देशों के लिए रोल मॉडल बन सकते हैं या बन रहे हैं?
भारत की बात को इसलिए लोग लोहा मानते हैं क्योंकि भारत वही बोलता है जो वो करता है
जी।
यानी कि अगर आप हम देखेंगे गैर पारंपरिक ऊर्जा के क्षेत्र में अगर हम देखेंगे
जी।
तो भारत ने जितने पहल लिए हैं, चाहे वो पवन ऊर्जा को लेकर हो, चाहे वो सौर्य ऊर्जा को लेकर हो, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो बनाया गया था, या आपने इंडियन ओशन रिम कंट्रीज को लेकर बनाया, कि किस तरीके से हम अपने जो प्राकृतिक संसाधन है उसका व्यापक मानव हित में हम कैसे उसका सदुपयोग कर सकते हैं, उस दिशा में जो है भारत ने काम किया है। तो इसलिए भारत ने खुद पहले काम किया और तब जाके विश्व को बताया, पर्यावरण के क्षेत्र में हो, चाहे वो जलवायु संरक्षण के क्षेत्र में हो, आप देखेंगे। तो इसलिए मैं समझता हूं कि भारत उदाहरण पहले अपना एक तरह से दिखाता है, करके दिखाता है, और फिर जो है बाकी विश्व और खासकर जो विकासशील देश है वो उसको अनुकरणीय मानते हैं।
प्रोग्रेस कैन नॉट कम विदाउट गिविंग वॉइस टू द ग्लोबल साउथ। आवर मंत्र इज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इंडिया रिमेन्स अ कमिटेड पार्टनर इन अफ्रीका डेवलपमेंट जर्नी। अफ्रीका गोल्स आर अवर प्रायोरिटीज, अवर अप्रोच इज टू ग्रो टूगेदर एज इक्वल।
इंडिया एसेंट एज अ सॉफ्ट पावर।
Over the past 11 years, India has significantly enhanced its status as a global soft power under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. Through cultural diplomacy, strategic outreach and global initiatives, India has strengthened its influence on the world stage beyond just economic and military might. Prime Minister Narendra Modi has strengthened ties with the Indian diaspora, using it as a bridge to enhance India's image and foster international goodwill, investment and collaboration. The Modi government has continuously promoted India's rich cultural heritage, yoga, Ayurveda and spiritual tradition worldwide. International Yoga Day has become a global phenomenon today. India's humanitarian aid during disasters and COVID-19 pandemic, development projects and capacity building programs, etc. across the globe have enhanced India's reputation as a responsible and caring global partner. In past 11 years, India has truly grown into a major global soft power by blending its rich culture with modern diplomacy.
Mr. Sajjanar, Bharat ki jo soft power hai, uska iske ek sashakt vaishvik chhavi banane mein kitna bada yogdan raha hai?
Ji, bahut bada yogdan raha hai, parantu main samajhta hoon jo iski sambhavna hai, iska jo potential hai, और कहीं ज्यादा है
जी।
बहुत सारे हम ऐसे बिंदु गिना सकते हैं जो हमारी सॉफ्ट पावर स्ट्रेंथ है। तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा जो भारत का जो डायस्पोरा है
जी।
वो जो बाहर के देशों में रह रहे हैं, वो हमारे सबसे बड़े प्रतिनिधि हैं, हमारे सबसे, जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं, हमारे सबसे बड़े राजदूत हैं वहां पर, क्योंकि वही उन लोगों को बताते हैं जो भारत की क्या मूल्य है, क्या वैल्यू सिस्टम्स हैं, और उसी से उनको प्रभावित वो होते हैं। और चाहे आप अमेरिका में जाएं, कहीं भी जाएं, तो जो भारत की छवि है वहां पर आम लोगों के बीच में, बहुत ही अच्छी है, क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो सभी एकदम लॉ अबाइडिंग सिटीजंस हैं। कोई भी वहां पर जिसे कहा जाए ओवरस्टे करना या ऐसा कुछ करना या कोई भी अगर क्रिमिनल एक्टिविटीज हो उसमें नहीं, और जो भी वहां पर दे आर एडिंग वैल्यू, वहां पर जो कुछ भी काम हो रहा है उनकी अर्थव्यवस्था है, उनकी इकोनॉमी है, उसमें वो ऐड कर रहे हैं। तो चाहे वो डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, स्पेस साइंटिस्ट हो, न्यूक्लियर साइंटिस्ट हो, किसी भी क्षेत्र में वो काम कर रहे हो, उसमें बड़ा अच्छा काम करते हैं। अभी पिछले दिनों योग में एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि बहुत ही आगे हम बढ़े हैं। आपको याद होगा 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे पहली बार यूएन जनरल असेंबली में, और तब उन्होंने ये बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स इनिशिएटिव था, आउट ऑफ द बॉक्स सजेशन था, जो हम योग को क्यों नहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बना। और उसमें आपको ये जानकर अचंभा होगा जो पूरे 193 देश हैं विश्व में जो कि यूनाइटेड नेशंस के सदस्य, उसमें से 177 देशों ने जॉइंट स्पॉन्सरशिप किया था, को स्पॉन्सर बने थे इस प्रपोजल का, जो ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। और इससे भारत की जो छवि है, और न केवल आर्थिक, न केवल सामरिक, न केवल तकनीकी, परंतु सॉफ्ट पावर के क्षेत्र में भी बहुत आगे बनकर उभरी है।
मिस्टर सुरेश, इंडियाज सॉफ्ट पावर, हाउ बिग, हाउ इम्पोर्टेंट हैज इट बीन फॉर इंडियाज राइज एज अ ग्लोबल पावर?
एब्सोल्युटली, अलोंग विद दैट आई वुड लाइक टू ऐड दैट यू सी मेडिकल टूरिज्म, इंडिया एक्सपोर्टिंग नॉट ओनली आयुर्वेदा बट द एंटायर हेल्थ केयर, आर मेडिसिन आर द चीपेस्ट इन द वर्ल्ड, सो द कंट्रीज ऑफ अफ्रीका, द कंट्रीज ऑफ लैटिन अमेरिका, दे आर हेविली डिपेंडेंट ऑन आर मेडिसिन विच वी आर सप्लाइंग टू दैम। So, health is a core area. Indian medical doctors are hugely in demand. Education. Indian education institutions are today attracting students from all over the world. And people are vouching for Indian education system. They are now heading the top Fortune 500 companies. People who have studied in Indian educational institutions. So, I think that education, health, tourism, that is also, and of course, Bollywood, our traditional, you know, our culture, our art, we have set up the Vivekananda centers,
right.
We have set up the Gandhi centers in different parts of the world, and I think that that is certainly creating a global goodwill. You know, India, Indian spirituality, that is today in great demand across the world, in a world which is torn apart by violence, torn apart by stress, anxiety. The younger generation is looking forward to Indian spiritual solutions, you know, and I think that that way the Indian thought process, Indian philosophy is today guiding the world to have a better future for mankind.
आज विदेश में रह रहे भारतीय अपना मंथा ऊंचा करके दुनिया के साथ आंख में आंख मिलाकर के बात कर रहे हैं। साथियों, हमारी सरकार ने डिप्लोमेसी को एक ह्यूमैनिटेरियन, एक ह्यूमैनिज्म से जोड़ा है, मानवीय संवेदनाओं से जोड़ा है। जब नेपाल में भूकंप आता है तो सबसे पहले भारत बचाव और सहायता के कार्य में लग जाता है। जब श्रीलंका में बाढ़ आती है तो भारत की नौसेना तत्परता से मदद के लिए सबसे पहले पहुंच जाती है। जब मालदीव में पीने के पानी का संकट खड़ा हो जाता है तो भारत के जहाज पानी भर भर करके वहां पहुंचाने के लिए लग जाते हैं। जब यमन में संकट आता है तो भारत अपने 4000 से अधिक नागरिकों को ही नहीं बचाता बल्कि दुनिया के करीब करीब 48 देशों के 2000 से ज्यादा व्यक्तियों को भी वहां से सुरक्षित निकाल करके उनके देश पहुंचाने का काम करता है।
मिस्टर केडी सुरेश, अम्बेसडर सज्जना, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन दिस स्पेशल प्रोग्राम इन आकाशवाणी स्पेशल सीरीज सेवा पर्व, वेयर टुडे वी वर डिस्कसिंग इंडियाज इमर्जेंस एज ग्लोबल पावर। थैंक यू जेंटलमैन।
थैंक यू वेरी मच।
विशेष श्रृंखला सेवा पर्व के 6वें संस्करण में आप सुन रहे थे वैश्विक शक्ति के रूप में उभरता भारत। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और राजनीतिक विश्लेषक के जी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रही थीं अनुभा रोहतगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी सुन सकते हैं।
यू आर लिसनिंग टू द 6th एपिसोड ऑफ द स्पेशल सीरीज सेवा पर्व ऑन इंडियाज इमर्जेंस एज अ ग्लोबल पावर। द पार्टिसिपेंट्स वर फॉर्मर एम्बेसडर अशोक सज्जनहार एंड KG सुरेश, पॉलिटिकल एनालिस्ट। मॉडरेटर वॉज अनुभा रोहतगी। This program was produced and presented by the News Services Division of Akashwani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official, and on Prasar Bharati's OTT platform, Waves. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.